पृष्ठ संख्या एक। भारतीय संगीत की परिभाषा एवं उसका ऐतिहासिक स्वरूप। भारतीय संगीत अत्यंत प्राचीन है। जब संपूर्ण पाश्चात्य विश्व अज्ञान के अंधेरे में सो रहा था, तब भारतीय तपोवनों में वैदिक ऋचाओं के साथ साम संगीत गुंजायमान हो रहा था। भारतीय सभ्यता का आरंभ सिंधु सभ्यता से होता है। इस सभ्यता में भी लोक संगीत तथा लोकवाद्यों से संबंधित यथेष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं। वैदिक काल तक आते आते हमारा संगीत विकसित एवं प्रांजल हो गया था। संगीत भारतीय जनमानस में सभ्यता के समारंभ से रच बस गया है। भारतीय संस्कृति का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो संगीत से अछूता रह गया हो। यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर विवाह आदि लोकोत्सवों तक संगीत के बिना एक अधूरापन सा रहता है। शिशु के जन्म के समय तथा प्राणी के अंतिम संस्कार के समय भी संगीत किसी न किसी रूप में रहता ही है। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में संगीत की स्वर लहरियां विद्यमान रहती हैं। ग्रामीण आंचलों से लेकर नगरी सभ्यता तक, अनपढ़ मजदूर से लेकर साक्षर तथा पढ़े लिखे युवक युवतियों तक संगीत की पहुंच समान रूप से है। संभवतः इसलिए कहा गया है कि संगीत की भाषा सार्वभौमिक है। म्यूजिक इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। संगीत मनुष्य को ऊंचा उठाता है, उसका परिष्कार करता है तथा ब्रह्मा से उसका साक्षात्कार कराता है। संभवतः इसलिए संगीत रत्नाकर के प्रथम श्लोक में नाद की आराधना करते हुए उसे ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। ब्रह्म ग्रंथि जमारुतानुगतिवा चित्तेन हृत्पंग कजे सुरीणामनु रंजकः। श्रुतिपद योयम् स्वयं राजते यस्माद् ग्राम विभाग वर्ण रचना लंकार जातिक्रमो वंदे नाद तनुम तमुद्धर जगदीतं मुद्दे शंकरम। मैं नित्य निरतिशय सुख की प्राप्ति के लिए उस आनंद धन शिव रूप स्वरूप स्वर संदर्भ का वेदन करता हूँ, जो ब्रह्म ग्रंथि आधार वक्र के उत्पन्न वायु से संबद्ध होकर मन द्वारा संगीतज्ञों के हृदय रूपी कमल से अभिव्यक्त होता है। तो षडज आदि स्वरों का अभिव्यंजक श्रुतियों का आधार स्तंभ है, जिससे ग्राम वर्ण अलंकार और जाति उत्पन्न होते हैं, तथा जो नाद स्वरूप एवं स्वयं प्रकाशित है। संगीत मुख्यतः प्रयोगात्मक ललित कला है, जिसका मूल उद्देश्य आत्म संस्कृति है। एक ओर जहां संगीत को आध्यात्मिक साधना हेतु सहज माध्यम के रूप में अपनाया गया, वहीं लौकिक रंजन इसकी विशेषता रही है। वेद पूर्व काल में ही इसका व्यवहार इन दोनों रूपों में होता आया है। भारतीय दार्शनिकों ने स्वर को सगुण ब्रह्म माना है, उसे निर्गुण ब्रह्म की अभिव्यक्ति कहा गया है, इसलिए वह मोक्ष का साधन है। वीणा वादन तत्वज्ञम् श्रुति जाति विशारदः लालस्यच प्रसासेन मोक्ष मार्ग नियक्षति। संगीत से संबंधित ग्रंथों के अध्ययन से अब हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि विभिन्न संगीत शास्त्रियों ने संगीत की क्या परिभाषा दी है। संगीत से संबंधित ग्रंथों की जब चर्चा होती है तो प्रमुख ग्रंथों का नाम सबसे पहले सामने आता है। नाट्यशास्त्र तथा संगीत रत्नाकर का प्रयोजन यद्यपि संगीत में नहीं था, किंतु फिर भी नाट्य रस की सिद्धि के लिए एक माध्यम के रूप में संगीत से संबंधित अंतरंग एवं बहिरंग लगभग सभी पक्षों का चित्रण किया गया है, किंतु नाट्यशास्त्र में संगीत की कोई पृथक परिभाषा प्राप्त नहीं होती। संगीत रत्नाकर में संगीत की एक सटीक परिभाषा प्राप्त होती है जो इस प्रकार है। गीतम वाद्यम तथा नृत्तम त्रयम संगीतमुच्यते, अर्थात गीत वाद्य तथा नृत्य इन तीनों के समावेश को संगीत कहा जाता है। संगीत शब्द में व्यक्तिगत तथा समूहगत दोनों विधियों की अभिव्यंजना स्पष्ट है। इसी कारण व्यक्तिगत गीत वादन एवं नर्तन के साथ समूह गान, समूह वादन तथा समूह नर्तन का समावेश इसके अंतर्गत होता है। इसी परिभाषा का अनुसरण प्राचीन काल से लेकर अधुना तक बराबर पाया जाता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार वाद्य तथा नृत्य गीत के अनुगामी के रूप में होते हैं। यही संकेत हमें संगीत रत्नाकर में भी प्राप्त होता है। सेनिया घराना के प्रतिष्ठित सितार वादक उस्ताद मुश्ताक अली खां जी का कथन है कि वाद्य गायन की अभिव्यक्ति का माध्यम है, अतः गायन को उत्तम तथा वाद्य को मध्यम मानने का कोई आधार नहीं है। जो गाया जाता है उसी की अभिव्यक्ति वादक अपने वाद्यों द्वारा करते हैं। शास्त्र सम्मत संगीत होने पर भी यह जीवंत नहीं है कि उससे सौंदर्य का सृजन नहीं हो सकता। आत्मा से निकला हुआ संगीत चाहे वह स्वर और ताल से कुछ विचलित ही हो जाए, हर्ष से रोमांचित कर देता है। राग और ताल तो संगीत का व्याकरण है, किंतु जिस प्रकार सही व्याकरण और वाक्य रचना आकर्षक कविता नहीं बना सकती, वैसे ही मात्र राग और ताल सही होने से ही उच्च कोटि का संगीत सृजन नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं कि जन सामान्य संगीत का रसास्वादन कर सकें, तो आपको प्रस्तुतिकरण के आधुनिक ढंग अपनाने होंगे। आज जन सामान्य संगीत कलाकारों से अनावश्यक उपेक्षाएं रखता है, उसके पास समय का भी अभाव है तथा उसकी अज्ञानता में वह धैर्य नहीं जिससे वह ध्वनि चमत्कार का आनंद उठा सके। ऐतिहासिक स्वरूप। भारतीय संगीत का उद्भव एवं विकास के अनुरूप होना स्वाभाविक था। प्रारंभ से वह जनजीवन से संबंध तथा उससे प्रेरणा प्राप्त करता रहा है। वैदिक सामगान से गांधर्व संगीत का विकास हुआ। धार्मिक अनुष्ठानों में जिस संगीत का प्रयोग हुआ वह सामगान तथा लौकिक समारोहों में जिस संगीत का व्यवहार हुआ वह गांधर्व कहलाया। गांधर्व के अंतर्गत जातिगान होता था जिसका विकास लोक संगीत से ही हुआ था। लोक धुनों को परिष्कृत एवं परिमार्जित कर उन्हें शास्त्रीयता प्रदान कर प्रमुख 18 जातियों का विकास हुआ तथा उनका मुख्य लक्ष्य देय परितोष था। प्रारंभ में इन जातियों का प्रयोग मुख्यतः नाटकों में किया जाता था। ये जातियाँ जब स्वतंत्र रूप से नाटकों के अतिरिक्त भी गाई बजाई जाने लगीं, जातिगान के नियमों में शिथिलता आने पर उन्हें राग कहा गया। उल्लेखनीय है कि मार्गी संगीत का संबंध धर्म और आत्मिक विकास से है तथा देशी संगीत का संबंध चित्त के रंजन से है। मार्गी संगीत के नियम अपरिवर्तनीय होते हैं, जबकि देशी संगीत के नियम समय समय पर बदलते रहते हैं। संगीत रत्नाकर के टीकाकार कल्लीनाथ के मार्गी तथा देशी संगीत को क्रम से गंधर्व और गान मान लिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज हमारे देश में प्रचलित शास्त्रीय संगीत को देशी संगीत कहा जा सकता है। इसकी प्रमुख दो धाराएं विद्यमान हैं, पहला हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, दूसरा दक्षिण कर्नाटकीय संगीत। हिंदुस्तानी संगीत उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में वर्तमान कर्नाटक प्रांत के धारवाड़, हुबली तथा आंध्र प्रदेश के हैदराबाद तक व्याप्त है तथा पूर्व में मणिपुर, असम से पश्चिम में सौराष्ट्र तक विद्यमान है। दक्षिणी कर्नाटक संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल प्रांत में प्रचलित है। इन दोनों पद्धतियों के मूलभूत सिद्धांत एक हैं, जो कुछ वैमनस्य है वह मुख्यतः शैलीगत है। जैसा इसके शास्त्रीय संगीत नाम से स्पष्ट होता है, यह एक कला है जिसका अपना एक निश्चित शास्त्र है। यह मौखिक एवं प्रदर्शनात्मक होते हुए भी एक विद्या की भांति अध्ययन अध्यापन का विषय रहा है। संपूर्ण भारतीय विधाओं की भांति संगीत विद्या का उद्देश्य भी अध्येता में मौलिक सृजन की क्षमता विकसित करना है। राग की अवतारणा प्रस्तोता के व्यक्तित्व के कलात्मक विकास एवं सृजनशीलता पर निर्भर करती है। राग में स्वरों का क्रमशः गान किया जाता है। राग के विशिष्ट स्वर सन्निवेशों को कलात्मक रीति से प्रस्तुत कर राग स्थापित करना तथा रंजकता उत्पन्न करना व्यक्ति विशेष की क्षमता पर निर्भर करता है। इस प्रकार हमारा भारतीय संगीत व्यक्तिवादी रहा है। इसकी सभी विधाओं तथा उसकी शैलीगत विशेषताओं में व्यक्ति को ही महत्व प्राप्त हुआ है। यह व्यक्तिवाद ही संप्रदायों या घरानों के निर्माण का मुख्य कारण है। गुरुओं या उस्तादों के विभिन्न कलात्मक दृष्टिकोणों से संगीत कला में विविध धाराएं उत्पन्न हुई, विभिन्न शैलियों का जन्म हुआ तथा संप्रदाय या घराने चल पड़े। उत्तर या दक्षिण संपूर्ण भारतीय संगीत में यह विविधता व्याप्त है, जो इसकी समृद्धि का द्योतक है। राग की अवधारणा व्यक्ति विशेष को कलात्मक पैठ पर निर्भर करती है तथा उसके सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान गुरुमुख से ही प्राप्त हो सकता है। राग ही नहीं, ताल में तालाक्षरों का विकास एवं उनका विस्तार, नृत्य में अंग एवं पद संचालन, ये सभी गुरु से प्रत्यक्ष समझकर ही सीखे जा सकते हैं। अतः प्राचीन काल से ही भारतीय संगीत का प्रायोगिक शिक्षण गुरुकुलों में गुरु शिष्य प्रणाली से होता चला आ रहा है। इस प्रणाली में विद्यार्थी को गुरु का मार्गदर्शन हर क्षण उपलब्ध रहता है। परिणामतः जो भी विद्यार्थी सीखता था एक सुयोग्य कलाकार के रूप में उभर कर आता था एवं मान्यता प्राप्त करता था। संगीत शिक्षण की यह गुरु शिष्य परंपरा राजा महाराजाओं के आश्रय में खूब पनपी। गुरु या उस्ताद को राजाश्रय होने से आजीविका चलाने की चिंता से मुक्ति तथा शिष्य को भी गुरु गृह में परिवार के सदस्य की भांति सम्मिलित किए जाने के कारण निश्चित समयावधि में पाठ्यक्रम पूर्ण कर नौकरी तलाशने की चिंता से मुक्ति रहा करती थी। परंतु सामंतशाही की समाप्ति एवं प्रजातंत्र के युग ने इस स्थिति में आमूल परिवर्तन किया। पाश्चात्य प्रभाव में ज्ञान विज्ञान के सभी विषयों की शिक्षा विद्यालयों एवं संस्थाओं में होने लगी। निश्चित समयावधि के पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं तथा उपाधियों का प्रचलन हुआ। शिक्षा जगत में हुए इस परिवर्तन का प्रभाव संगीत शिक्षा के ऊपर पड़ना स्वाभाविक था। संगीत शिक्षण में रुचि रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति संगीत शिक्षण का हकदार हो गया। अतः जन सामान्य को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने की दृष्टि से संगीत में भी संस्थागत शिक्षण का सूत्रपात हुआ। इसे 20वीं शता की देन कहा जा सकता है। हमारे देश में पिछले लगभग 100 वर्षों में यह संस्थागत शिक्षण बड़ी शीघ्रता से चारों ओर फैली एवं प्रचलित हुई है।